प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा से मोआब, एदोम और सोर के विनाश की भविष्यवाणी की। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। जब हम आज आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, विनती करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों पर अपनी अनुग्रह प्रदान करें, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में, हृदय में कार्य करने पाए। आप उन्हें उनके बीमारियों से छुटकारा दें, उनके जीवन की परेशानियों से छुटकारा दें, उन्हें अपने वचन से आप आशीषित करें। हाँ प्रभु, हम विनती करते हैं जो बीमार अवस्था में है, आप उन्हें धैर्य दें, उन्हें चंगाई दें। जो विचलित हैं, परेशान हैं, चिंता और दबाव में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। आज के वचन के द्वारा आप उन सब से बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक 27 अध्याय और उसके 32 पद को पढ़िए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे। शोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शोर एक विशाल जलपोत था जो समुद्र में डूब गया है। यहेजकेल 27 उसके 34 पद में हम फिर से पढ़ते हैं, जिस समय तू अथाह जल में लहरों से टूटी, उस समय तेरे व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नष्ट हो गए। जी हाँ, सब कुछ समुद्र में डूब जाएगा। यहेजकेल 27 के अंतिम पद अर्थात 36 पद में लिखा है, देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध ताना मार रहे हैं, तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि शोर के खंडहरों में विचरण करते समय लोगों ने संगीत सुना और न ही हंसी की आवाजें सुनी। वहां पर इमारतें, सोना, चांदी आदि कुछ भी नहीं देखा गया। वहां पर जो देखा गया वह केवल मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और महानगर के विनाश के अवशेष और खंडहर थे। स्वर का परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे दंड दिया। शोर के इस दृश्य में हमारे समय और हमारी पीढ़ी के लिए एक निश्चित संदेश है कि हम घमंड न करें, अन्यथा परमेश्वर हमें भी नाश कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 27 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 28 से जारी रखेंगे। विषय है सोर के प्रधान और राजा के लिए संदेश। सोर के प्रधान के लिए संदेश। इस अध्याय में हम सोर और सैदा राजा और प्रधान के लिए संदेश पढ़ेंगे। यह भविष्यवाणी स्थानीय शासक से परे संसार के राज्यों के पीछे शैतान के संबंध में है। आइए हम पढ़ते हैं यहेजकेल 28 उसके 1 और 2 पद में। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। यहां पर हम देखते हैं कि यहेजकेल के पास फिर परमेश्वर का वचन पहुंचा और इस बार 2 संदेश हैं। एक सोर के प्रधान के लिए है और दूसरा सोर के राजा के लिए। इस महान राज्य, महान व्यापारिक केंद्र, महान राजनीतिक केंद्र और महान गढ़ सोर के साथ ही हम देखेंगे कि संसार के राज्यों के पीछे किसका हाथ है। वह शैतान है। उसने प्रभु यीशु की परीक्षाओं के समय उसे भी संसार के राज्य देने का लालच दिया था। इसे हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं। तब शैतान उसे ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परंतु उसने जगत के राज्यों पर उसके अधिकार से इनकार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वे सब उसके अधीन हैं। परंतु एक दिन प्रभु यीशु संपूर्ण जगत पर राज करेगा। वह शैतान का उपशासक नहीं होगा। शैतान तो आज भी आकाश का शासक है, हमें अच्छा लगे या ना लगे। संसार के राज्यों के पीछे उसी का हाथ है। मेरे मित्रों, यहां मेरे विचार में ख्रिस्त विरोधी का यह प्रतीक है। धर्मशास्त्र के विवरण के अनुसार ख्रिस्त विरोधी 2 होना चाहिए। यहुना के अनुसार तो वे अनेक हैं। एक वह जो मसीह यीशु का इनकार करे, अर्थात उसका बैरी, और दूसरा उसका नकल करने वाला। एक धर्म का अगुआ होगा और एक राजनीतिक शक्ति होगा। यहेजकेल की पुस्तक में यहां हमारे सामने दोनों का समायोजन किया गया है। यह शैतान का उपशासक है। तूने मन में फूल कर यह कहा, मैं ईश्वर हूं। ख्रिस्त विरोधी ठीक यही कहेगा। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में प्रेरित पौलुस के द्वारा से देखते हैं कि उसके विषय में वह क्या कहता है। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। सोर का प्रधान कहता था, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु परमेश्वर कहता है, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। जी हां, मनुष्य चाहे जितना कोशिश कर ले वह मनुष्य ही रहेगा। यहेजकेल 28 के 3 पद में लिखा हुआ है, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। यह दानियल का एक और संदर्भ है। आपको याद होगा कि दानियल और यहेजकेल समकालीन थे। यहेजकेल दानियल का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि वह बेबीलोन का प्रधानमंत्री था और परमेश्वर के लिए खड़ा रहता था। मेरे अपने विचार में यहेजकेल का काम बहुत कठिन था। वह बंदियों के साथ रहता था और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाता था। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि मुझे चुनने का अवसर मिलता तो मैं राजमहल में रहना चाहता, मुझे एक रात शेरों के मान में बिताना क्यों न पड़े। अपेक्षा इसके कि बंदियों में सेवा करूं, परंतु यहेजकेल के पास अपना चुनाव नहीं था। मेरे मित्रों, यहेजकेल दानियल की बुद्धि की चर्चा करता है। यहेजकेल कहता है कि सोर का शासक एक बुद्धिमान मनुष्य था। यदि आप सोचें कि उस युग में बुद्धिमान मनुष्य नहीं थे तो आप गलत हैं। मेरे विचार में उस युग के बुद्धिमान मनुष्य आज के विद्वानों को केजी कक्षा का विद्यार्थी बना देंगे। यहेजकेल के युग के मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान थे, और मेरे विचार में सोर का शासक ख्रिस्त विरोधी के धार्मिक अगुए का प्रतिरूप है। वह इसराइल से निकलेगा और राजनीति का शासक ख्रिस्त विरोधी संसार की अन्य जातियों के समुद्र से उभरेगा। वह एक अन्य जाति ही होगा। यह धर्म का अगुआ उस राजनीतिक शासक का प्रधानमंत्री होगा, जैसे दानियल बेबीलोन में था या जैसे यूसुफ मिस्र देश में था। मुझे इनकी तुलना नहीं करना चाहिए, परंतु समझाने के लिए यह उदाहरण स्वरूप मुझे इन दो पद को बताना पड़ रहा है। आगे हम देखते हैं राज को दंड। यहेजकेल 28 के 11 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहेजकेल किसी को भूलने नहीं देगा कि वह अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा है, वह परमेश्वर से प्राप्त संदेश उन्हें सुना रहा है। यहां सोर नगर के लिए विलाप गीत है। हमने सोर के राजा के बारे में चर्चा की है और अब हम सोर के लिए विलाप सुनेंगे। सोर के राजा से हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। वहां अनेक राजा थे। उस युग में राजा होना आसान काम नहीं था। राजा के सिर पर तलवार हमेशा लटकी होती थी। महिमा अधिक समय की नहीं थी। कहा गया है कि संसार की महिमा यूं ही समाप्त हो जाती है। मेरे प्रियो, उस राज्य की पृष्ठभूमि में शैतान राज कर रहा था। धर्मशास्त्र के अंश जो शैतान और बुराई की उत्पत्ति का उल्लेख करते हैं, उनमें यहेजकेल का अध्याय 28 भी एक है। मैं इस पर अधिक बल देना नहीं चाहता हूं, परंतु इन वचनों को ध्यान से पढ़ें। यहेजकेल 28 के 12 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। शैतान परमेश्वर द्वारा सृजित सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। ध्यान रखें कि शैतान एक सृजित प्राणी है। वह सुंदरता में सिद्ध रचा गया था। यदि आप सोचते हैं कि शैतान के सिंह हैं और एक पूंछ है, तो आप गलत हैं, जैसा कि लोग सोचते और देखते भी हैं। यह कल्पना मध्यकालीन युग में यूनानी दंत कथाओं से उभरी है। पिर्गामोम, कुरिंत और इफिसुस में अपोलुस के मंदिर थे। ऐसा विवरण पन देवता या बबकुस देवता का है, जो भोग विलास का देवता था। उसके सिंह थे। वह अंगार का देवता था, मदिरा का देवता था। कमर से नीचे वह बकरी के समान था। अतः सिंह और पूंछ और नुकीले नाखूनों वाला प्राणी यूनानी धर्म से आया था। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन शैतान को ऐसा नहीं दर्शाता है। बाइबल उसे सुंदरता में बेजोड़ बताती है। यदि आप देख पाए तो आप कहेंगे कि उससे अधिक रूपवान और कोई नहीं है। जी हाँ, अपने बचपन में मैंने एक पथ प्रवर्तक को देखा जो ऐसा रूपवान था कि मनुष्य उसका दीवाना हो जाए, और हुआ भी। लोग उसे पूछते थे और वह स्वयं को भगवान भी कहता था। आप जानते हैं कि वह वास्तव में क्या था? वह शैतान का पुजारी था। बचपन में मुझे बाइबल का ज्ञान तो उतना अधिक नहीं था, और उसने लगभग मुझे भी पथ भ्रष्ट कर दिया था। ओह, शैतान के पुजारी कैसे भयानक होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसके 13 से 15 पद में पौलुस शैतान के पुजारियों के विषय में कुछ लिखता है। ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जी हाँ, उसके बारे में यहेजकेल कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। उसके पतन का कारण क्या था? पद 15 में हम इसका कारण देखेंगे। आइए अब हम आगे पढ़ें यहेजकेल 28 उसके 13 पद में। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ध्यान दीजिए कि तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। सोर का कोई भी राजा अदन नामक बारी में नहीं रहा था। तब आगे देखते हैं, तेरे पास सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा सुंदर प्राणी होगा। तब लिखा है, डफ और बांसुरियां तुझ ही में बनाई गई थी। जी हाँ, वह स्वयं में संगीत था। क्या आप पृथ्वी पर संगीत की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 21 पद में आप देखेंगे कि वह कैन के वंशजों से उत्पन्न हुआ था और आज का संगीत सुनकर मुझे विश्वास हो जाता है कि वह अथाह कुंड से ही उभरा है। शैतान भी एक संगीतकार है। यहेजकेल 28 उसके 14 पद में लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। शैतान छाने वाला अभिषिक्त करूब था, अर्थात वह परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करता था। यह पृथ्वी की अदन वाटिका नहीं थी, वरन स्वर्ग का ही चित्रण है। शैतान की पहुंच स्वर्ग तक थी। यहेजकेल 28 के 15 पद में लिखा हुआ है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। मेरे प्रियो, शैतान परमेश्वर के सिंहासन का रक्षक था। उसके पास सृजित प्राणी का सबसे ऊंचा स्थान था। उसके पतन का कारण क्या था? यहेजकेल तो इस विषय में कुछ भी नहीं कहता है, परंतु अध्याय 14 पद 12 से 15 में यशाया हमें बता चुका है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गढ़े की तह तक उतारा जाएगा। उसके पतन का कारण उसका घमंड था। शैतान बहुत ऊंचे पर अपना सिंहासन स्थापित करना चाहता था। वह परमेश्वर से अलग स्वयं परमेश्वर बनना चाहता था। वह परमेश्वर के साथ विद्रोह में था। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे पवित्र जन हैं जो अपने आप को सिद्ध समझे और सोचें कि आपने मानदंड पूरा कर लिया है, तो स्मरण रखें कि शैतान ज्योति का स्वर्गदूत था। वह पूर्ण रूपेण सिद्ध था, परंतु उसका पतन हुआ। तो आप क्या हैं? मैं क्या हूं? हम तो नाशमान मनुष्य हैं। परमेश्वर विद्रोह को सहन नहीं करता है, अतः वह क्या करेगा? नाश करेगा। यहेजकेल 28 के 16 पद में लिखा हुआ है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। शैतान को पाप का दंड दिया जाएगा। वह एक प्राणी ही तो है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मुझे इससे बड़ी शांति मिलती है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं उससे जीत नहीं सकता। मैं उसके जोड़ का नहीं हूं, अतः मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि परमेश्वर ही उसे देखेगा। यहेजकेल 28 उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, यह घमंड है। जी हाँ, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। सुलेमान जैसे बुद्धिमान राजा ने मूर्खता की, और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का सर्वोच्च सृजित प्राणी, पूर्ण रूपेण सिद्ध एवं सर्वज्ञानी, उसने मूर्खता की। ओह मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान भी आज ऐसी ही मूर्खता कर सकती है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। लिखा है कि मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। परमेश्वर एक दिन शैतान का तमाशा बनाएगा, लेकिन आज जब हम संसार में हैं और हम भी शैतान की बातों पर चलते हैं, तो निश्चय ही जान लें कि हमें भी उसका हिस्सा बनना होगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हमारे बीच में भयानक दिन आए, आइए हम परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लें और उसके साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ा लें, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें उद्धार की प्राप्ति होती है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन कैसा है, लेकिन इस बात को आज हमने वचन से सीखा है कि शैतान ने घमंड रखा, और इतना ही नहीं, उसने बुद्धिमानी पर भी घमंड किया, और वह एक रूपवान था। आज हम में से कई लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कई बार हम भी अपने रूप रंग पर, धन दौलत पर घमंड करते हैं, और तब हम अपने जीवन में विनाश को लाते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए, अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख में रखें और कहें कि प्रभु आप हमारी सहायता करें, हमारे इस घमंड से, हमारे इस गलत फहमी से, हमारे इस बुराई से आप ही हमें बचाएं। जब हम सब प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर हम सब की सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आपने आज के इस वचन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, नहीं एक भी नहीं। रब को जो चाहता हो, नहीं एक भी नहीं। करता हो जो भलाई, करता हो जो भलाई, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। कोई उसके जैसा, नहीं एक भी नहीं। चाहे हो कोई कैसा, चाहे हो कोई कैसा, नहीं एक भी नहीं। जो अपनी जान दे दे, नहीं एक भी नहीं। सबके गुनाह ले ले, सबके गुनाह ले ले, नहीं एक भी नहीं। अच्छा नहीं।